प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन। शगुन, रोजाना की तरह आज भी कार्यक्रम में काफी कुछ होने वाला है। अपने श्रोताओं को हम लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और जानेंगे कि देश में आज क्या क्या हुआ और आगे क्या हलचल रहेगी।
वेल, नमस्कार सरफिरोजी, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। यस, वी हैव लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच वी हैव लाइंड अप फॉर यू। हेडलाइंस, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, reports, capsules, tributes will be there. So all of this over the next 30 minutes. We are beginning first with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in Somnath Swabhiman Parv and key spiritual events linked with it in Gujarat today.
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ये मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वर्ल्ड बुक फेयर बिगिंस इन द नेशनल कैपिटल, ओवर 1000 पब्लिशर्स रिप्रेजेंटिंग 35 कंट्रीज टेकिंग पार्ट इन द 9-डे इवेंट।
ईरान में जारी देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की।
एंड इन विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट, मैच अंडरवे बिटवीन यूपी वॉरियर्स एंड गुजरात जायंट्स इन नवी मुंबई। सो दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया and we will take a look at the developments taking place at national or global level. First, we will discuss about World Book Day. Well, today we are observing two big days, one of which I told you, and on one hand we are celebrating the inauguration of World Book Fair, a festival of knowledge, we told you in the headlines as well, imagination, ideas, and on the other we are observing World Hindi Day. Honors one of the world's most widely spoken and culturally rich languages. So first, let's resume our discussion on World Book Fair. So, Firozi.
Ji, Shagun.
And there is a quote which I remember reading. A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. So these are words by George R. R. Martin.
बिल्कुल शगुन, और एक बहुत ही मशहूर निर्देशिका भी हैं जुम्पा लहरी, उनका भी कहना ये है कि किताबें जो हैं वो आपको ऐसा मौका देती हैं कि आप एक इंच पैर को हिलाए बगैर पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं।
We can visualize, we can imagine,
जी,
enter into our own imagined world. And the 53rd edition, Sir Firozi, of the New Delhi World Book Fair 2026, it opened today in the national capital. So this is 9-day book fair, and this brings together over 1,000 publishers from more than 35 countries.
शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से इस विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है।
And listeners, they will be really happy to know, the book lovers alike, they will be very very happy to know that for the first time in its history, the entry has been made completely free for the general public. And this move, it is aimed at encouraging wider participation by people for fostering a stronger reading culture across the country.
बिल्कुल शगुन, और मेरे ख्याल से एक ऐसा इवेंट है जिसे हम कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर पर मार्क करके रखते हैं कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक होता है। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े प्रकाशनों की इसमें भागीदारी रहती है।
And the visitors can witness various other activities. They will be taking place on the sidelines of the fair, which includes Authors Connect, Yuva Corner, Child Authors Corner, and there are other cultural events also.
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक हैं, जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं, सभ्यताओं को की स्मृतियों को संरक्षित करती हैं और समाज को दिशा प्रदान करती हैं।
वेल, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हेल्ड द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर एज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ कंट्रीज रीडिंग कल्चर। He said that the book fair has become a prestigious and trusted platform for publishers around the world.
पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला ही आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है।
So listeners, the theme for this year's New Delhi World Book Fair, it is Indian Military History, Valor and Wisdom at 75.
और शगुन थीम रिले इस मेले का मुख्य आकर्षण इस बार होने वाला है, जिसमें सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक कैटलॉग का चित्रण किया गया है और 100 से अधिक थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि पुस्तक मेला इस महीने की 18 तारीख तक जारी रहेगा।
And I'm sure that our listeners, they know that reading is a habit that can improve their lifespan by reducing stress levels, enhancing mental health, developing new neural pathways, and this can help you learn empathy as well. And this also improves your ability to communicate, also provide you with healthy entertainment. There are so many benefits, as we can see, and there are other benefits as well, numerous others. And every time you stop one task because of a notification, and you're reinforcing the reward mechanism in your brain, making it harder to concentrate not just on whatever you are doing in that particular moment, but with future tasks as well.
बिल्कुल शगुन, और जब हम बिना किसी रुकावट के पढ़ने के लिए समय निकालते हैं तो इस तरह हम अपनी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा के कामों पर भी ध्यान लगाना आसान हो जाता है।
Of course, there is digital overload and because of that, shorter attention spans and the digital environment, this encourages fragmented information, reducing patience for lengthy texts. But many consider deep, immersive book reading, well, it is a lost art due to the digital distractions. So, listeners, by devoting few minutes to reading books, you can enjoy amazing brain benefits that reading has to offer. Also, do you know that reading helps you feel connected to the world in a unique way? You can read about characters who are struggling with the same issues as you are, and that connection helps you feel visible and less alone.
बिल्कुल शगुन, रिसर्च से भी पता चलता है कि जब किसी ऐसे कैरेक्टर से हम जुड़ाव महसूस करें जो हमारे ही जैसे हालात का सामना कर रहा हो, तो हमें हमारे अंदर जो अकेलेपन की फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं।
Right. And when you are commuting to your workplace, college or anywhere else, you can carry a novel or any book of your choice that you may like and then read it. So it's better than waiting for a signal in an underground metro. Right? Don't you think so?
Bilkul Shagun.
And with that, we'll proceed to the other topic. World Hindi Day.
Bilkul Shagun. मुंशी प्रेमचंद जो साहित्यकार हुए हैं हिंदी के बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है बल्कि ये एक भावना है। तो श्रोताओं, आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान और पहचान बनाए रखना कितना जरूरी है। हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और जड़ों का आईना भी है।
And Sir Firozi, on this day in 2006, in the year 2006, the first World Hindi Conference, it was held in Nagpur with the aim to promote the language worldwide. And since then, every year 10th of January is being observed as World Hindi Day.
ये दिन हर साल विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका लक्ष्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
Well, Home Minister Amit Shah addressed the National Convention of the Maheshwari Community in Jodhpur today. Mr. Shah highlighted that the use of indigenous products will make the country self-sufficient and self-reliant. He also emphasized the importance of promoting native language. He said that youth should learn and speak other languages as well, but must never forget their mother tongue.
भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल श्रोताओं, एक ऐसी दुनिया में जो संवाद और समझ पर पनपती है, उसमें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता का सम्मान करना आपस में जुड़े हुए समाजों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है।
Well, right. And the coincidence of the World Book Fair inauguration and World Hindi Day serves as a reminder that reading and languages, they go hand in hand. While books connect us to ideas, languages may, like many and diverse, connect us to people. So now, after you have enjoyed this program with us, please take out some time to read too.
और शगुन, अब समय आ गया है कि अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलें और उनसे जानें कि आज उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
Well, let's begin this. So, India is set to become the epicenter of global energy dialogue as the 2026 edition of India Energy Week returns to the coastal state of Goa. From January 27th to 30th, the event will gather world leaders and industry giants to chart a course for a sustainable and secure energy future. Our correspondent has more details.
Goa is preparing to welcome over 120 countries for India Energy Week 2026. This flagship event, held under Ministry of Petroleum and Natural Gas, serves as a vital platform for global ministers, CEOs and technology providers to address energy security and decarbonization. Akashvani spoke exclusively with media advisor to India Energy Week 2026, Raju Jain, to know more.
Beyond policy, the event will showcase India's success in clean energy, particularly its ethanol blending program, which has saved 1.59 lakh crore rupees in foreign exchange while significantly reducing carbon emissions. Over the 4 days, attendees will engage in ministerial roundtables and technology showcases focusing on green hydrogen, sustainable fuels and digital transformation. As the first major energy gathering of the year, IEW 2026 reinforces India's growing influence in global energy diplomacy.
The summit arrives at a pivotal moment as the International Energy Agency projects that India will account for over 23% of the world's incremental energy demand by 2050. To meet this challenge, the 2026 edition will spotlight India's reform-driven model. Recent legislative changes, such as Oilfields Act 2025, have already streamlined the sector by introducing single petroleum leases and time-bound approvals. This is Mahesh Sopre for Akashwani News, Panaji.
श्रोताओं, कोल्लम में आयोजित चैंपियंस बोट लीग ने जिले की जल क्रीड़ाओं और सांस्कृतिक समारोह को एक जीवंत केंद्र बना दिया है। तिरुवनंतपुरम संवाददाता से हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
Kollam is witnessing a festive atmosphere as the district hosts grand finale of the Champions Trophy boat race today. The event has already given boost to the tourism sector in the region. Set against the beautiful backdrop of Ashtamudi Lake near KSRTC depot, the prestigious water carnival has drawn large crowds, tourists turning the city into a vibrant cultural hub. As part of the build-up to the race, cultural and sports programs were organized across various parts of Kollam over the past 2 days. These events not only promoted water festival but also showcased Kerala's rich artistic and cultural traditions and attracting domestic and international visitors. The boat race, scheduled to be concluded by around 5:30 p.m. today, features 9 renowned Chundam Vallams competing for the boat league final. 8 other boats, including Irittukuthi A and B grade, Tekkanodi and Women Road boats, are also participating and highlighting inclusivity and the evolving profile of Kerala's traditional water sports. Tourism stakeholders say the event has led to surge in hotel bookings, houseboat operations and local commerce, especially around Ashtamudi region. Visitors have been arriving in large numbers to experience the spectacle, adding momentum to Kollam's tourism revival. Smithy Empalurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
Well, a large number of tourists from across the country, they are continuously thronging Kashmir region to celebrate the new year and experience the cold atmosphere and snowy areas at various tourist places. And in Jammu and Kashmir, as we are telling you about it, the upper reaches, including Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg, they have already received light to moderate snowfall. The Kashmir region is reeling under 40-day harshest weather period. This is called Chille Kala, since December 21st till January 30th. We have a detailed report. Let's listen in.
The Kashmir Tourism Department is taking all measures to make winter season more tourist-friendly, with maximum facilities in place at all prominent and offbeat tourist destinations across Kashmir region. Talking to Parikrama, Director Tourism Kashmir, Sayyid Kamar Sajjad said,
Tourism sector, agar aap dekhenge, to the Dal in and around, see how many people are associated with the trade of the tourism. Hamari trade fraternity, usme aap hoteliers bhi aap lete hain, uske saath aap tour operators bhi lete hain, service providers, jo aapko transport de rahe hain, ATV, Snowmobile, sledge, walas, skiing professionals, restaurants, tourists, guides, shikara walas, etc. ये सब के सब जो है मुंसलिक एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है. So many people who are actually directly associated and getting their employment from the tourism sector. जो आम घर है उसको आप गेस्ट हाउस में तब्दील करें. उसके अलावा हमारे जो पिलग्रिम अट्रैक्टिव स्पॉट्स है जिनकी एक अहमियत है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसमें जो मरकजी सरकार ने प्रसाद स्कीम के तहत खर्चा किया. Basic essence of those schemes and interventions is to create employment opportunities for the local youth.
Tourists are enjoying the beauty, serene and above all safe and secure atmosphere across Kashmir region. This year, the tourism department is focusing on augmenting tourist infrastructure, local employment opportunities and destination grooming to build a stronger and more sustainable tourism season ahead. Tariq Rather for Parikrama, Akashwani News, Srinagar.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर. विमेंस प्रीमियर लीग में आज नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 208 रन का लक्ष्य दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए. और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है.
On the 10th of January 1616, England's first official ambassador to India, Thomas Rowe, came to the court of Mughal Emperor Jahangir at Ajmer. Although his four-year-long negotiations with Jahangir didn't prove successful, the visit marked the beginning of British economic and political interest in the Indian subcontinent.
Rowe arrived at the port of Surat in September 1615 with a letter from King James I to the then reigning Mughal Emperor Jahangir, seeking a trade agreement. Determined that his arrival to the Mughal Empire should be an occasion of dignity and splendor, Rowe did not leave the ship for a full week, mainly due to arguments over customs searches. He finally made the journey to Ajmer, where he was presented to the Emperor Jahangir on the 10th of January 1616. Rowe was vexed to discover that the Mughals regarded relations with the English as a very low priority. On arrival, he was showed into a substandard accommodation.
Rowe lived in the Mughal Empire until the 17th of February 1619, during which time he labored to improve England's reputation among Mughal officials and tried desperately to obtain a royal farman for permanent trade. He eventually returned to England in 1619 without the trade agreement.
We also remember freedom fighter Narhari Vishnu Gadgil, who was born on the 10th of January 1896 in Malhargarh, Madhya Pradesh. Popularly known as Kaka Saheb Gadgil, he was an erudite lawyer and an outstanding literary figure. Gadgil was influenced by great freedom fighters including Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi and Vallabhbhai Patel.
Spiritual leaders Swami Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekananda also made a deep impression on him. For his active participation in the National Freedom Movement, he was imprisoned 8 times by the British.
Gadgil joined the Indian National Congress immediately after obtaining his law degree. He served as the secretary of Pune District Congress Committee in 1920. Later, he became the president of Maharashtra Pradesh Congress Committee. He was elected to the Central Legislative Assembly in 1934. Gadgil was a pioneer in social reform movements in Maharashtra in the 1930s.
After independence, Gadgil served as a minister in the first central cabinet of India between 1947 and 1952. He held the portfolios of public works and mines and power. is credited with initiating the project of building a military-caliber road between Pathankot to Srinagar via Jammu and Kashmir as a part of strengthening India's hold over the region during and after the 1947 Indo-Pakistan War. He also initiated important development projects including Bhakra, Koyna and Hirakud dams. Gadgil also served as the governor of Punjab.
Gadgil was a prolific writer and wrote several books and articles on politics, economics, law, history, oratory, etc. His important works include Pathik and Rajya Shastra Vichar. For his great contribution to Marathi literature, he was elected president of the Marathi Sahitya Sammelan in 1962. He remained committed to the welfare of the public till his death on the 12th of January 1966.
आज ही के दिन कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में प्रसिद्ध गिरिजा कुमार माथुर ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा था। लंबे अरसे तक इन्होंने आकाशवाणी में सेवाएं दी। इनकी कविता में रंग, रूप, रस, भाव तथा शिल्प के नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिरालंक, शिलापंख, चमकीले, और इसी तरह इन्होंने नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी हैं।
Well, today we are also remembering Carl Linnaeus. Well, he's known as the father of modern taxonomy. Biologist and physician, he formalized binomial nomenclature, the modern system of naming organisms.
आज जयंती है प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच अभिनेता सलीम गौस जी की भी। चेन्नई में जन्मे और वहीं शिक्षित हुए सलीम गौस ने बाद में FTII पुणे से स्नातक किया और फिर सिनेमाघरों की ओर आकर्षित हुए। वे एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी थे। सलीम की अदाकारी का लोहा सारा बॉलीवुड मानता था।
राइट सर फिरोजी, वी आर रिमेम्बरिंग सलीम गौस, दी इंडियन फिल्म एंड थिएटर एक्टर। Well, he is known for his powerful villain roles, particularly in the 1990s Bollywood era. Well, he was recognized for his distinctive voice and impactful performances in Hindi cinema, theater as well, leaving behind a legacy as a respected character actor.
आज कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध शास्त्रीय तथा फिल्मों के पार्श्व गायक के जे येसुदास को भी हम याद कर रहे हैं। इनकी सुरीली आवाज सुनने वालों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। येसुदास ने हिंदी के अतिरिक्त मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी, पंजाबी जैसी भाषाओं के गीतों के लिए भी अपनी सुरीली आवाज दी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में की थी। इनके गाए गीत गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, सुरमई अखियों में, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, जाने मन तेरे दो नयन, चांद जैसे मुखड़े पे, ये ऐसे गीत रहे जो श्रोताओं की जुबां पर चढ़ गए।
गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहां रे, आके यहां रे।
वर्ष 2002 में येसुदास को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
सो लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग बासु चटर्जी। बिल्ट अ सिनेमा दैट फेल्ट लाइक लिव्ड लाइफ सर फिरोजी
जी, बिल्कुल।
एंड बियॉन्ड सिनेमा हिज कंट्रीब्यूशन टू टेलीविजन इट आल्सो रिमेन्स अनफॉरगेटेबल। एंड इन मूवीज, इफ आई टॉक अबाउट मूवीज, फ्रॉम छोटी सी बात, रजनीगंधा, चितचोर, पिया का घर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, एंड टू द सेयरिंग, कमला की मौत, हिज फिल्म्स दे फाउंड पोएट्री इन मिडिल क्लास होम्स, हेजिटेंट लव एंड एवरीडे मॉरल चॉइसेस। एंड द म्यूजिक प्लेड अ क्वाइट वेल बट अ क्रूशियल रोल, लेंडिंग लाइटनेस, वार्मथ एंड इमोशनल रिदम विदाउट ओवरवेलमिंग द स्टोरी।
बिल्कुल शगुन, और बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह बासु चटर्जी की फिल्में भी हल्के मूड वाली मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां होती थी, तो क्यों ना उनके कुछ लिखी उनकी फिल्मों के कुछ गीत सुन लिए जाए।
मेरे अनुरागी मन में अधिकार ये जब से साजन का धर धड़कन पर माना मैंने जाने क्यों अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों.
Listeners, today it's Hrithik Roshan's birthday. The actor who is the true blueprint of one of the fittest actors. The star's commitment to staying fit, it has inspired millions to hit the gym and achieve a great, great physique. And, well, he has worked in films such as, there's no need even to tell you that. Kahoon Na Pyaar Hai, which was helmed by his father Rakesh Roshan. His latest work is War 2. Which was released, and then it served as a sequel to the 2019 release War.
Sir, main aapse ek vaada karta hoon. Ya to ye machine kamyaab hoga, ya phir main zinda wapas nahi aaunga. Ye main vaada karta hoon, sir. Vaada karta hoon, sir.
This is from the movie Lakshay.
और शगुन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋतिक की पहली प्रमुख भूमिका बॉक्स ऑफिस की सफल फिल्म कहो ना प्यार है में रही, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए. साल 2000 की फिजा और 2001 में आई फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम ने इन्हें घर घर में पहचान दिलाई. 2003 की फिल्म कोई मिल गया के लिए ऋतिक रोशन ने दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते.
Hrithik Roshan was once told that he could never dance or work out. So how the superstar has proved everyone wrong, we already know.
हम सभी के लिए एक inspiration है, right? और ऋतिक ने धूम 2 जो आई थी 2006 में, इसमें एक चोर की भूमिका निभाई. वहीं 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर में मुगल बादशाह अकबर की भूमिका के लिए उन्होंने बहुत प्रशंसा अर्जित की.
इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं. ओ कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर.
We know him for his agile dance steps as well. The actor has always looked flawless in everything he does.
बिल्कुल शगुन, और देश के सर्वाधिक आय वाले अभिनेताओं में ये गिने जाते हैं, और अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर इन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में कई बार जगह दी गई है. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी आल्सो होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड.
नमस्कार.